पुनः सबके साथ राज्यसभा में बैठकर अपना सब वृतांत पिता से निवेदन किया और नागराज तक्षक से मुक्तता होने की बात बतलाई। राजकुमार का चरित्र देख और सुनकर राजा इंद्रसेन हर्ष से विहन हो गए। उन्होंने अपने मन में यही माना कि मेरे पुत्र वधु ने भगवान महेश्वर की आराधना करके इस अनुपम सौभाग्य का अर्जन किया है। निषदराज ने यह मंगलमय वार्ता दूतों के द्वारा महाराज चित्रवर्मा को भी कहला दी। यह अमृतमय वार्ता सुनकर महाराज चित्रवर्मा आनंद से विहीन हो गए और बड़े वेग से उठकर उन्होंने संदेशवाहक को उपहार में बहुत धन दिया। फिर अपनी पुत्री को बुलाकर उन्होंने उससे वेधक चिन्ह का परित्याग करवाया और उसे नाना प्रकार के आभूषण से विभूषित किया। तत्पश्चात समूचे राष्ट्र के गांव और नगर आदि में बड़ा भारी उत्सव हुआ और सब लोगों ने राजकुमारी सिमंतिनी के सदाचारी बड़ी प्रशंसा की। चित्रवर्मा ने इंद्रसेन के पुत्र चंद्रगद को बुलाकर सिमंतिनी को उनके साथ विदा कर दिया। चंद्रगद ने तक्षक के घर से लाए हुए रत्न आदि आभूषणों के द्वारा, जो मानव मंत्र के लिए अत्यंत दुर्लभ है, अपनी पत्नी को अलंकृत किया। तपे हुए स्वर्ण के समान सुशोभित 40 कोस तक जाने वाली सुगंध से युक्त दिव्य अंगड़ा से सिमंतिनी की बड़ी शोभा हो रही थी। कमल के केसर के समान रंग वाले कल्प वृक्ष पुष्पों से बनी हुई और कभी ना कुंभ लाने वाली माला भी सती सिमंतिनी की शोभा बढ़ा रही थी। इस प्रकार शुभ मुहूर्त में अपनी पत्नी को साथ लेकर ससुर की आज्ञा से चंद्रगद पुनः अपनी नगरी में आए। महाराज इंद्रसेन ने अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाकर तपस्या द्वारा भगवान शिव की आराधना करके योगी पुरुषों को उपलब्ध होने वाले उत्तम गति प्राप्त की। राजा चंद्रगद ने अपनी धर्म पत्नी सिमंतिनी के साथ 10,000 वर्षों तक नाना प्रकार के विषयों का उपभोग किया। उन्होंने 8 पुत्रों और 1 कन्या को जन्म दिया। सिमंतिनी प्रतिदिन भगवान महेश्वर की पूजा करती हुई अपने स्वामी के साथ सुख पूर्वक रहने लगी। उसने सोमवार व्रत के प्रभाव से अपना खोया हुआ सौभाग्य प्राप्त कर लिया। त्यागी हुई रानी और राजकुमार की वेश्य एवं शिव योगी द्वारा रक्षा तथा शिव योगी का राजपुत्र को धर्म का उपदेश करना। सूत जी कहते हैं, एक समय दशाण देश के राजा व्रजबाहु की पत्नी सुमंति अपने नवजात शिशु के साथ असाध्य रोग की शिकार हो गई। इसलिए दुष्ट बुद्धि राजा ने उसे वन में त्याग दिया। वहां अनेक प्रकार के कष्ट भोगती हुई वह यत्न पूर्वक आगे बढ़ने लगी। बहुत दूर जाने पर उसने वेश्य का एक नगर देखा, जिसमें बहुत से स्त्री पुरुष निवास करते थे। उसका नगर रक्षक एवं बहुत बड़ा महाजन वेश्य था, जो पद्म आकार के नाम से प्रसिद्ध था। वह दूसरे कुबेर के समान धनवान था। उस वेश्य राज के घर में सेवा टहल का कार्य करने वाली कोई दासी उधर ही आ रही थी। वह दूर से ही राजपत्नी को देखकर उनके समीप आई। उसने रानी को देखते ही उसका सारा हाल जान लिया। वह पुत्र सहित अत्यंत कष्ट भोग रही थी। दासी ने अपने स्वामी को उस स्त्री का दर्शन कराया। वैश्य राज ने रोगी पुत्र के साथ स्वयं भी रोग से पीड़ित हुई राजपत्नी को एकांत में बुलाकर उसका सब वृतांत पूछा और सब बात जानकर लेने पर अपने घर के पास ही एकांत गृह में उसे ठहराया। अन्न वस्त्र जल और शैया आदि का प्रबंध करके वैश्य ने माता के समान उसका आदर किया। उस घर में सुरक्षित होकर निवास करती हुई राजपत्नी के व्रण और यक्ष्म का आदि रोगों की शांति हुई। कुछ ही दिनों में रानी का पुत्र घाव से पीड़ित होकर वेदों की चिकित्सा शक्ति से परे जा पहुंचा और मृत्यु को प्राप्त हो गया। पुत्र के मरने पर रानी महान कष्ट में पड़ी हुई तथा शोक से ग्रस्त हुई, मूर्छित हो गई और टूटी हुई लता के समान धरती पर गिर पड़ी। फिर सचेत होने पर वैश्य की स्त्रियों ने उसे बहुत समझाया, तथापि वह अत्यंत दुखित हो विलाप करने लगी। हाँ पुत्र, बंधु बांधवों से त्यागी हुई अपनी से दीन एवं अनाथ माता को छोड़कर अपने तुम कहाँ चले गए हो? तुम जब वह इस प्रकार विलाप कर रही थी, उसी समय ऋषभ नाम से प्रसिद्ध शिव योगी वहां पहुंचे। वैश्यराज ने अर्घ देकर उनका सत्कार किया। तत्पश्चात वे शोकाग्रस्त राजपत्नी के समीप जाकर इस प्रकार बोले, बेटी तुम इतनी क्यों रो रही हो? संसार में जिसका जन्म हुआ है और कौन मृत्यु को प्राप्त हुआ है, ये शरीर आदि जल के फैन के समान क्षणभंगुर है। कभी इनकी प्रीति का भ्रम होता है, कभी ये शांत हो जाते हैं और कभी उन्हें इनकी स्थिति होती है। अतः फैन के समान इस शरीर की मृत्यु होने पर विद्वान पुरुष शोक नहीं करते। तत्व सत्य आदि तीनों गुण माया से उत्पन्न होते हैं, उन्हीं तीनों गुणों से शरीर की उत्पत्ति हुई है। अतः सबके शरीर त्रिगुणमय ही है। सत्य गुण की अधिकता होने से जीव देव योनि को प्राप्त होता है, रजोगुण से मानव योनि में जन्म लेता है और तम गुण की अधिकता से अपनी वासनाओं के अनुसार वह पशु पक्षी आदि योनि में उत्पन्न होता है। वर्तमान संसार में जीव अपने कर्मों के बंधन से बंधकर बार बार ऐसी सुख दुखमयी अवस्था को प्राप्त होता है जिसका अनुमान करना अत्यंत कठिन है। जिनकी आयु एक कल्प तक की मानी गई है, ऐसे देवताओं की स्थिति में उलट फेर होता रहता है। फिर जो अनेक प्रकार के रोग से ग्रस्त है, ऐसे मानव देहधारी प्राणियों की तो बात ही क्या है। कोई काल को ही इस शरीर की उत्पत्ति में कारण बताते हैं, कोई कर्म को और कोई गुणों को ही हेतु मानते हैं। वस्तुतः है, काल कर्म और गुण तीनों से ही शरीर का आधान हुआ है। यह पांच भौतिक शरीर उत्पन्न हो या मरे, इसे देखकर विद्वान पुरुष हर्ष और शोक नहीं करते। जीव अपव्यक्त से उत्पन्न होता है और अपव्यक्त में ही लीन हो जाता है। केवल मध्य काल में जल के बुलबुले की भांति व्यक्त सा प्रतीत होता है। जीव जब गर्भ में आता है, उसी समय उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। वह देववश जन्म लेकर जीवित रहता है अथवा जन्म लेते ही सहसा उसकी मृत्यु हो जाती है। कितने ही जीव गर्भ में ही नष्ट हो जाते हैं। कुछ जन्म लेने पर तत्काल मर जाते हैं, कुछ जवान होने पर मृत्यु को प्राप्त होते हैं और कुछ बुढ़ापे में परलोकगामी होते हैं। पहले का कर्म जैसा होता है, वैसा ही शरीर जीव को प्राप्त होता है तथा वह कर्मों के अनुसार ही सुख दुख भोगता है। विधाता के द्वारा ललाट में लिखी हुई आयु, सुख दुख, विद्या और धन लिए हुए जीव जन्म लेता है। कर्म का उल्लंघन करना असंभव है। काल का भी अतिक्रमण करना किसी के लिए संभव नहीं है। जगत के समान पदार्थ अनित्य है, इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। स्वप्न के पदार्थ में नियम पूर्वक स्थिरता कहाँ है? इंद्रजाल में सच्चाई कहाँ है? शरद ऋतु के बादलों में चिरस्थाई कहाँ है और प्राणियों के शरीर में नित्य कहाँ है? अब तक तुम्हारे 100 कोटि आयुत 10,000 जन्म व्यतीत हो चुके हैं। अब तुम ही बताओ, तुम किसकी किसकी पुत्री हो, किसकी किसकी माता हो और किसकी किसकी पत्नी हो? यह शरीर 5 भूतों का बना हुआ है। यह त्वचा रक्त और मांस से बंधा हुआ है। मैदा मज्जा और हड्डियों का समूह है तथा मल मूत्र और कफ का भाजन है। मोह में पड़ी हुई नारी, यह जो तुम्हारे पास दूसरा शरीर तुम्हारे पुत्र का शव पड़ा हुआ है, इस अपने पुत्र को भी अपने शरीर से निकाला हुआ मन समझकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। कोई पंडित भी अपने तपस्या विद्या बुद्धि मंत्र औषधि तथा रसायन से मृत्यु का उल्लंघन नहीं कर सकता। सुमुखी, आज एक जीव की मृत्यु हुई है तो कल दूसरे की अतः इस अनित्य शरीर के लिए तुम शोक नहीं करना चाहिए। मृत्यु सदा समीप ही रहती है, फिर बताओ देहधारियों को क्या सुख है। अतः यदि तुम जन्म बुढ़ापा और मृत्यु को जीतना चाहते ही हो तो मृत्यु जीतने वाले सबके ईश्वर भगवान उमापति की शरण में जाओ। तभी तक मृत्यु का घोर भय है तथा जन्म और जरा अवस्था का भय है। जब तक कि जीव भगवान शिव के चरण बिंदु की शरण में नहीं जाता, अत्यंत भयंकर संसार में नाना प्रकार के दुखों का अनुभव करके मनुष्य का मन जब उसकी ओर से विरक्त हो जाता है, उस समय उसे भगवान महेश्वर का ध्यान करना चाहिए। जो मन से भगवान शिव के ध्यान रूपी रसामृत का पान करता है, उस पुरुष को फिर संसार की विषय रूपी मदिरा को पीने की तृष्णा नहीं होती।